नमस्कार, आज हम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे स्रोत डॉक्टर जेम्स हैंसन के काम पर आधारित है, जो मानते हैं कि ये एक तरह की गृह स्तरीय इमरजेंसी है। आज हम समझेंगे कि हैंसन की दलीलें क्या हैं, कारण क्या है और वो क्या समाधान सुझाते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं।
बिल्कुल, और शायद सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर हैंसन का वो जो 350 पार्ट्स पर मिलियन मतलब बीपीएम का आंकड़ा है, वो मानवता के लिए सुरक्षित क्यों माना जाता है, खासकर तब जब हम असल में तो लगभग 385 पीपीएम पार कर चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है।
हाँ, तो हैंसन के मुताबिक इस समस्या की जड़ वो कहाँ है? स्रोत बताते हैं कि जीवाश्म ईंधन और उसमें भी कोयले से चलने वाले जो बिजली घर है वो सबसे बड़े गुनहगार है।
सही कहा।
हैंसन का तो ये भी तर्क है कि 2030 तक दुनिया के सारे कोयला प्लांट या तो बंद हो जाने चाहिए या फिर उनमें वो कार्बन सोखने वाली तकनीक लगनी चाहिए।
हाँ।
पर मामला सिर्फ कोयले तक ही सीमित नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बड़ा खिलाड़ी है, वो है मीथेन गैस। और ये जानना काफी चौंकाने वाला है कि जो चावल के खेत हैं या पशुधन मतलब एग्रीकल्चर से जो मीथेन निकलती है, वो कम समय में लगभग 20 साल के पीरियड में CO2 से कोई 86 गुना ज्यादा गर्मी रोकती है।
86 गुना?
हाँ, 86। मतलब हमारा खाना भी एक तरह से ग्रह को गर्म करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
ये तो वाकई चिंता की बात है। और क्या चीजें हैं जो इस स्थिति को और पेचीदा बना रही हैं?
हाँ, यही पर वो क्लाइमेट फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जलवायु प्रतिक्रिया तंत्र सामने आते हैं, जैसे आर्कटिक की समुद्री बर्फ का पिघलना।
अच्छा।
वो एक खतरनाक एल्बेडो फ्लिप पैदा करता है। कहने का मतलब ये है कि जो चमकदार बर्फ पहले सूरज की मान लीजिए 50-70% रोशनी वापस भेज देती थी, वो पिघलकर गहरे रंग का पानी बन जाती है जो सिर्फ 6% रोशनी लौट आता है, बाकी सारी गर्मी सोख लेता है।
तो उससे और बर्फ पिघलती होगी।
बिल्कुल, और ज्यादा गर्मी और बर्फ पिघलना ये एक दुष्चक्र है जो चलता रहता है। और ये भी देखिए कि हमारे महासागरों ने 1971 से अब तक 90% से ज्यादा अतिरिक्त गर्मी सोख ली है।
बापरे। और इन टिपिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है जिनका अक्सर जिक्र होता है?
टिपिंग पॉइंट्स वो सीमाएं हैं जिनके पार अगर सिस्टम चला गया तो उसमें अचानक और ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल। और चिंता की बात यह है कि पहले जिन 9 अहम टिपिंग पॉइंट्स के बारे में सोचा जाता था, जैसे आर्कटिक समुद्री बर्फ, अमेजोन का जंगल, ग्रीनलैंड की बर्फ, कि वो शायद 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर एक्टिवेट होंगे, वो अब ऐसा लगता है कि सिर्फ 1-2 डिग्री की बढ़त पर ही एक्टिवेट होने के संकेत दे रहे हैं।
ये जटिलता और फीडबैक लूप्स वाकई डराने वाले हैं। तो इसे देखते हुए क्या डॉक्टर हैंसन कोई व्यावहारिक रास्ता सुझाते हैं? उनके समाधान क्या है?
हाँ, बिल्कुल। हैंसन का जो सबसे मुख्य प्रस्ताव है वो है फी एंड डिविडेंड।
फी एंड डिविडेंड?
हाँ, इसका सीधा मतलब ये है जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर उनके कार्बन उत्सर्जन के लिए एक शुल्क, एक फीस लगाना, और उससे जो भी पैसा जमा हो वो सारा का सारा सीधे देश के नागरिकों में बराबर एक लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में बांट देना।
अच्छा।
उनका मानना है कि इससे न सिर्फ उत्सर्जन कम होगा, अनुमान है कि 50% से ज्यादा, बल्कि जो निचले 70% परिवार हैं उनको असल में आर्थिक फायदा होगा। और तो और 20 सालों में करीब 28 लाख नौकरियां पैदा होंगी और जीडीपी में भी अच्छी खासी 1.375 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है।
ये तो काफी दिलचस्प विचार है। प्रदूषण पर टैक्स लगाओ और पैसा सीधे लोगों को दो। क्या और भी समाधान है उनके पास?
हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है कि हैंसन परमाणु ऊर्जा के भी काफी मुखर समर्थक हैं।
परमाणु ऊर्जा?
जी, उनका मानना है कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड, वो शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती जितनी जरूरत है कोयले को पूरी तरह हटाने के लिए। इसके अलावा वो प्राकृतिक समाधानों पर भी बहुत जोर देते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर जंगल लगाना, पेड़ लगाना, जिनमें सालाना लगभग 8.9 पेटाग्राम CO2 सोखने की क्षमता है, और खेती के बेहतर तरीके अपनाना, जैसे धान की खेती में लगातार पानी भरने के बजाय वो गीला सूखा वाला तरीका इस्तेमाल करना। वो इन प्राकृतिक तरीकों को ज्यादा तरजीह देते हैं बजाय उन महंगी और अभी तक पूरी तरह साबित न हुई तकनीकों के, जैसे BCCS या डायरेक्ट एयर कैप्चर।
उस 350 पीपीएम वाले लक्ष्य पर वापस आते हैं, ये आंकड़ा ये आया कहां से था?
ये असल में पेलियो क्लाइमेट यानी प्राचीन जलवायु के अध्ययन से आया है। डेटा ये दिखाता है कि पृथ्वी पर बर्फ की चादरें तभी बननी शुरू हुई जब हवा में CO2 का लेवल लगभग 450 ppm से नीचे गिरा।
अच्छा, तो ये ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है।
तो हैंसन के अनुसार 350 ppm वो लेवल है जिसके आसपास हमारा ग्रह स्थिर रह सकता है, जैसा कि मानव सभ्यता के विकास के दौरान रहा है। और चेतावनी ये है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें वो अब 30 साल पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रही हैं।
विज्ञान तो काफी स्पष्ट लगता है, लेकिन फिर रुकावट कहाँ आ रही है? इतनी तेजी से एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा?
देखिए, सबसे बड़ी बाधा है राजनीति और आर्थिक हित। स्रोत बताते हैं कि दुनिया की लगभग 90% ऊर्जा अब भी जीवाश्म ईंधन से ही आती है।
90%?
हाँ, और ये इंडस्ट्री जाहिर है बेहद शक्तिशाली है। सिर्फ एक आंकड़ा लें, 2022 में अमेरिका में तेल और गैस कंपनियों ने अपनी बात मनवाने के लिए, मतलब लॉबिंग पर, $90 मिलियन से ज्यादा खर्च किए।
उफ।
और इसके साथ ही एक और समस्या है जिसे कॉर्पोरेट ग्रीन वॉशिंग कहते हैं।
ग्रीन वॉशिंग?
हाँ,
मतलब
वो कंपनियां जो पर्यावरण के लिए अच्छा दिखने के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, विज्ञापन करती हैं, पर असल में जमीन पर ठोस काम बहुत कम करती हैं। हैंसन कैप एंड ट्रेड जैसी योजनाओं की भी आलोचना करते हैं जिनमें कंपनियों को प्रदूषण करने का परमिट खरीदने बेचने दिया जाता है। वो मानते हैं कि अप्रभावी हैं और इनमें धोखाधड़ी की गुंजाइश भी रहती है।
तो कुल मिला के हैंसन का जो मुख्य संदेश है वो क्या है?
उनका संदेश बहुत सीधा है और तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। स्रोत बताते हैं कि 2010 से 2025 के बीच ग्लोबल वार्मिंग की जो रफ्तार है वो 50% तक बढ़ गई है। हैंसन इसे दिशा बदलने का हमारा आखिरी मौका मानते हैं।
ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। तो संक्षेप में कहें तो डॉक्टर हैंसन के विश्लेषण के अनुसार जलवायु परिवर्तन एक आपातकाल है, मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन और मीथेन है, और इससे खतरनाक फीडबैक लूप और टिपिंग पॉइंट्स और भी जटिल बना रहे हैं। समाधानों में फी एंड डिविडेंड, परमाणु ऊर्जा और प्रकृति आधारित उपाय शामिल हैं, लेकिन शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक बाधाएं रास्ते में हैं।
बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर जलवायु परिवर्तन को व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, रिसाइकल करना, कम गाड़ी चलाना वगैरह, लेकिन डॉक्टर हैंसन फी एंड डिविडेंड जैसे प्रणालीगत, मतलब पूरे सिस्टम को बदलने वाले बदलावों पर जोर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े पैमाने की नीतियों और हमारी व्यक्तिगत कोशिशों के बीच क्या रिश्ता है? क्या एक के बिना दूसरा प्रभावी हो सकता है? इस संतुलन पर सोचना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।